अगली सूरत यासीन, और उसकी सिर्फ चंद आयात 21 आयात हैं इस बारे में। 36 नंबर सूरा है। हरूफ मुकत्तात से शुरू होने वाली सूरतें जो इन नामों पे हैं उसमें से ये सूरत है, और हमारे यहाँ बड़ी मारूफ सूरत है। किसी के घर से आप मुसहफ भी लेंगे ना तो ये पेजेस बड़े पड़े होते हैं, और लोग इसको मुर्दों पे पढ़ते, पांच मुबीनों पे पढ़ते, मरने वालों के ऊपर पढ़ते। आइए देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या है। पूरी सूरत के अगर आप हिस्से बनाकर देखें तो 6 मुख्तलिफ चीज़ें आपको दिखती हैं। आयत 1 से 12 तक नबी सल्लम की रिसालत की दलीलें हैं। 13 से 32 में इनकारे रिसालत की सज़ा, और आयत 33 से 50 में नेमतों का शुक्र और तौहीद को इख्तियार करने की दावत। 51 से 68 क़्यामत के अहवाल हैं, जन्नत जहन्नम के, और 69 से 70 में नबी सल्लम का कुछ मज़ीद तारुफ है, और फिर आयत 71 से 83 में सिफाते कुदरत हैं। पूरी सूरत का मेन थीम क्या है? अल्लाह की कुदरत, ताकत और इख्तियार, और गैर अल्लाह की बेइख्तियारी को तस्लीम कर लो और नबी सल्लम को रसूल मान लो, और आपकी दावत जो तौहीद आखरत और कुरान की है उस पर ईमान ले आओ। आइए देखते हैं कि आज हम इसमें से क्या ले कर उठेंगे और इससे हमें कितना फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 18 आयत 1 से 12। यासीन वल कुरानिल हकीम। अल्लाह ताला मुर्दों को ज़िंदा करने वाला है। यासीन कसम है कुरान बा हिकमत की कि बेशक आप पैगम्बरों में से हैं, यानी आप दिल ना मैला करें कि ये आपको नहीं मान रहे तो शायद मैं ही गलत हूँ, सीधे रास्ते पर हैं। ये कुरान अल्लाह ज़बरदस्त मेहरबान की तरफ से नाजिल किया गया है ताकि आप ऐसे लोगों को डराएं जिनके बाप दादा नहीं डराए गए थे, बस इसी वजह से गाफिल हैं। इनमें से अक्सर लोगों पर बात साबित हो चुकी है, बस ये लोग ईमान न लाएंगे। हमने इनकी गर्दनों में तोक डाल दिए हैं, फिर वो ठोड़ियों तक हैं जिससे उनके सर ऊपर को उलट गए हैं। पूरा सर उठाकर पीछे फेंक देना। कभी किसी की गर्दन में कॉलर लगा देखा है आपने? अल्लाह ना करे ये जो बैक बोन है ना उसमें दर्द हो तो कॉलर लगवा देते हैं, बंदा गर्दन नहीं ला सकता। तौक, तासुब। अपने आपको बड़ा समझना, ये एक तौक होता है, अकड़ ही नहीं ख़त्म होती, अकड़े हुए। अल्लाह कहता है कि आप इनको डराएं या ना डराएं बराबर है, जो खुद जो बड़ा है वो अल्लाह को बड़ा कैसे माने, वो आपकी बड़ाई कैसे तस्लीम करे, वो आपकी बात कैसे सुने। अब देखिए इल्म के साथ ये तकब्बुर बड़ा आ जाता है, मैं किसी की बात क्यों सुनूं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वैसे तो कोई पढ़ा नहीं सकता। हम कई दफ़ा नेकियों के कितने मौके होते हैं हमारे पास, वो ज़ाया कर देते हैं। सिर्फ़ एक जुमला बोलकर किसी को आप दावत दे देते हैं तो आपका हिस्सा बन गया था उसमें। आप क्यों नहीं देते? क्योंकि मैं तो नहीं ना पढ़ा रही, मैं तो नहीं ना बता रही, मेरी जमात तो नहीं ना, मेरा प्लेटफॉर्म तो नहीं है ना। तो इस तरह की चीज़ों में मक्का वाले थे, तासुब था। मदीना वालों का और मसला था हसद का। तो अल्लाह यहाँ मक्की लोगों के बारे में बात करके कहते हैं आप इनको डराए ना डराए मानेंगे नहीं। वो कहते हैं ना कि इन तिलों में तेल नहीं है। बस आप तो सिर्फ ऐसे शख्स को डरा सकते हैं जो नसीहत पर चले और रहमान से बिन देखे डरे। बस आप इनको मगफरत और बावक्कार अजर की खुशखबरियाँ सुना दीजिए। बेशक हम मुर्दों को ज़िंदा करेंगे और हम लिखते जाते हैं, और वो अमाल भी जिनको लोग आगे भेजते हैं, और इनके वो अमाल भी जिनको पीछे छोड़ जाते हैं, और हमने हर चीज़ को एक वाज़ेह किताब में ज़ब्त कर रखा है। ये कौन सी किताब है? लौहे महफूज, आपकी मेरी ज़िंदगी की किताब है। बहुत कुछ है इन आयात में। एक तो इनकी तफसीर सुनिए, शॉर्ट कोर्स है हमारे पास एक कुरान की करने, तो उसमें सूरह यासीन की बड़ी खूबसूरत सी यानी सॉफ्टनर किस्म की तफसीर है, बोझल नहीं है। आप सुनना चाहें तो वेबसाइट से या यूट्यूब चैनल से सुन सकते हैं, और चाहें तो आप कहीं अपने कोर्स भी करवा सकते हैं जी। कुरान की किरणें ऐप के ऊपर भी है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पता चला? कुरान का वसफ हिकमत है, और कुरान नबी सल्लम की रिसालत पर गवाह है, और आप तमाम रसूलों से अफसल मुकाम रखते थे। आज हम इस किताब के साथ कैसे हैं? सीखने की बातें क्या हैं कि लोगों को इनके बुरे अंजाम से खबरदार करना है, ईमान लाना है, नसीहत का असर लेना है, नसीहत की पैरवी भी करनी है, और बिन देखे रहमान से डरना है, और अल्लाह ताला मेरे आमाल को लिख रहा है, इसका यकीन रखना है। ज़रा सा आप कोई शक पड़ जाए ना कि कोई आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, कोई आपकी हर बात नोट कर रहा है, कैमरा आपको देख रहा है, तो लोग कॉन्शियस हो जाते हैं। अल्लाह ताला की नज़रों में एक एक चीज़ आपकी, ये जो आयत है ना, माँ कद्दम हुआ सारा हूँ, इस पर लेक्चर है, वट आई एम लीविंग बिहाइंड, मैं अपने पीछे क्या छोड़ रही हूँ, और औलाद आपके मेरे प्रिंट्स, आप इन कुर्सियों से भी थोड़ी देर में उठ जाएंगे, हो सकता है रात को यहाँ नमाज होती हो ये उठा दें, फिर बाद में कोई कुर्सी आगे तो कोई पीछे, लेकिन इन कुर्सियों ने आपके प्रिंट ले लिए। क़यामत के दिन ये जगह, ये ज़मीन जिस पे और इसके नीचे की ज़मीनें गवाही देंगी कि अल्लाह इस जगह बैठकर इसने कुरान सुना था, इसका दिल बदला था। और ये क्लासरूम आपका दिल बदल दे तो ये आपके लिए ग़ारे हिरा बन जाएगा, जहाँ बैठकर आपको कुरान भी समझ आता है और मकसद हयात भी समझ आता है। आगे देखिए आयत 13 से 21 आखिरी आयात है पारे की। वतरिब लहुम मसलन असहाब अल-क़रिया, रसूलुल्लाह ने पैगाम साफ साफ पहुंचा दिया, और आप इनके सामने एक मिसाल यानी एक बस्ती वालों की पेश कीजिए, उस वक़्त जबकि इनके पास कई रसूल आए, जब हमने इनके पास दो को भेजा, बस इन लोगों ने अव्वल दोनों को झुटला दिया, फिर हमने तीसरे से तायद की, बस इन तीनों ने कहा हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं, इन लोगों ने कहा तुम तो हमारी तरह मामूली आदमी हो, और रहमान ने कोई चीज़ नाजिल नहीं की, यानी कुछ नहीं, ऐसे ही है बस बातें ही बातें, तुम निरा झूठ बोलते हो, इन रसूलों ने कहा हमारा परवरदिगार जानता है कि बेशक हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं, और हमारे ज़िम्मे तो सिर्फ वाज़े तौर पर पहुँचा देना है, उन्होंने कहा कि हम तुमको मनहूस समझते हैं, नऊज़ुबिल्लाह, अगर तुम बास ना आए तो हम पत्थरों से तुम्हारा काम तमाम कर देंगे, और तुमको हमारी तरफ से सख्त तकलीफ़ पहुँचेगी, इन रसूलों ने कहा तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ ही लगी हुई है, क्या इसको नहूसत समझते हो कि तुमको नसीहत की जाए, बल्कि तुम हद से निकल जाने वाले लोग हो। और एक शख्स इस शहर के एक आखिरी हिस्से से दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, ऐ मेरी कौम, इन रसूलों की राह पर चलो, ऐसे लोगों की राह पर चलो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते और वो खुद भी राह रास्त पर हैं। ये दो जुमले नोट कर लें, किसी को चेक करना हो ना तो ये दो हैं, बेनफसी बग़ैर किसी मुआवजे के काम करना और ख़ुद भी राह रास्त पे होना। तो क्या सीखा, रसूलों को नहीं झुटलाना, साफ साफ पैगाम पहुँचा देना है, दीन के काम पे किसी से शुक्रिया तक की तलब नहीं रखनी, कहाँ कोई माली तोहफे तहाइफ और ऐसी चीज़ें, साफ साफ पैगाम पहुँचा देना है, अल्लाह वालों को संसार करने की धमकियाँ नहीं देनी, हद से नहीं गुजरना, रसूलों की पैरवी करनी है और हिदायत याफ्ता होना है। पारे के अख्ताम पे अपना मुहासबा करते हैं, क्या मैं लोगों को बुरे अंजाम से खबरदार करती हूँ, मैं बिन देखे रहमान से डरती हूँ, क्या मैंने पैगाम पहुँचाने का इरादा कर लिया, अल्लाह मुझे आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। यहाँ पे पारा 22 ख़त्म हुआ। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आगे हम 23वां पारा शुरू करने लगे। व मालिया, और क्या है मुझको, ये पारा क्या है, इखलास से भरा हुआ। ख़ास तौर पर इसमें हम दो सूरतें सूरत सुआफात और सूरत सुआद जो पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें अल्लाह के मुखलस बंदों की बात है। थोड़ा सा पारे से मुतल्लिक बातें, अजमत सहाबा का मौजू है इसमें, और इसमें क्या है, बेनफसी। बेनफसी क्या होती है, 13वें पारे का शुरू सोच ले, वमा उबर्रियु नफसी इन्ना नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू। वह नफ्स की कबाहत थी, नफ्स तो हमेशा बुराई की दावत देता है, लेकिन जो बंदा अपने नफ्स को लताड़ ले, समझते हैं लफ्ज़ लताड़ना, रौन दे, मौता, जंगे मौता जो होती वो लताड़ना था, यदि अपने नफ्स को कुचल ले, उसको किसी की बात बुरी ना लगे, मुझे कह दिया, मुझे आगे कर दिया, मुझे पीछे कर दिया, मेरे लिए ये कर दिया, मेरे पे तनकीद कर दी, सहाबाए कराम इससे बिल्कुल बेनियाज थे, उनका नफ्स नफ्से अम्मारा नहीं रहा बल्कि नफ्स ख़त्म हो गया। अब देखिए कि ये नफ्स है जो हमें शर्मिंदा कराता है हर जगह, हम हर जगह अपनी मर्जियां करना चाहते हैं और फिर हम शर्मिंदा हो जाते हैं। सहाबाए कराम इस किस्म के किरदार में ढल चुके थे कि कि वो एक मिट्टी के माधु थे। इस पर एक वाक़या सुना देती हूँ हज़रत अबू हुरैरा का। एक शख्स उनके पास आकर कहता है, अबू हुरैरा वो फलां शख्स जो है ना वो आपकी बुराई कर रहा था। अच्छा अब हम होते तो मेरी ठहरो पहले मैं तुम्हें इसकी तो बताऊँ, फिर हमें उसकी लंबी चौड़ी कहानियाँ खोल देनी थी। कहने लगे कि मेरे दोस्त मुझे अबू हुरैरा को तौर वक्त तीन बातों की फिक्र है। नंबर एक कि आज तो मैं अच्छे काम कर रहा हूँ लेकिन मौत पता नहीं कैसे आएगी, खत्म बिल खैर होगा कि नहीं। अगली बात यह कि जब नामे अमाल बट रहे होंगे तो पता नहीं मेरा दाएं हाथ में मिलेगा कि बाएं में। और तीसरा यह है कि मैं पुल सरात से आफियत से गुजर जाऊंगा, और अगर मैं इन तीन जगहों से गुजर गया तो मुझे कोई परवाह नहीं, बेनफसी, लोग मुझे अच्छा कहे कि बुरा कहे, आई डोंट केयर। लेकिन अगर मैं इनमें से किसी एक भी जगह से अगर रोक लिया गया तो दुनिया के हर बंदे को हक पहुंचता है कि मुझ अबू हुरैरा की बुराई करे। कैसे इनके नफ्स थे आप देखिए, जहां बिठाया बैठ गए, जो कहा कह दिया, जिधर कराया। ये मौलाना हाली जो बातें कहते हैं ना, ये बातें बड़ी सच हैं। मैं चंद जुमले जो कई दिन से चाह रही थी कि सुना दूं, आज सुनाती हूँ आपको। मौलाना हाली ने सहाबा कराम और ख़ास तौर पे खिलाफत राशिदा का नक्शा किन लफ्ज़ों में पेश किया, आप इसको बेनफसी के टाइटल के अंदर सुनिए। जब उम्मत को सब मिल चुकी हक़ की नेमत, अदा कर चुकी फ़र्ज अपना रिसालत, रही हक़ पे बाकी न बंदों की सोहबत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया खल्क से कसदे रहलत, तो इस्लाम की वारस एक कौम छोड़ी, कि दुनिया में जिस जिस की मिसालें हैं थोड़ी, सब इस्लाम के हुक्म बरदार बंदे, सब इस्लामियों के मददगार बंदे, खुदा और नबी के वफादार बंदे, यतीमों के रांडों के गमख्वार बंदे, रहे कुफ्र व बातिल से बेजार बंदे, नशे में मैं हक के सरशार बंदे, जहालत की रस्में मटा देने वाले, कहानत की बुनियाद ढा देने वाले, सर अहकामे दीन पे झुका देने वाले, खुदा के लिए घर लुटा देने वाले, हर आफत में सीना सपर करने वाले, फक्त एक अल्लाह से डरने वाले। अगर इख्तलाफ इनमें बाहम दगर था, यानी कभी कभी इख्तलाफ हुए, तो क्या करते थे? तो बिल्कुल मदार इसका इखलास पर था, झगड़ते थे न झगड़ों में शर था, खिलाफ आशती से खुश आइंद तर था, ये थी मौज पहली इस आज़ादगी की, हरा जिससे होने को था बागे गीती, दुनिया का बाग न खानों में थी वहाँ तकल्लुफ की कुल्फत, न पोशिश यानी कपड़ों से मकसूद थी जेब व जीनत, अमीर और लश्कर की थी एक सूरत, फकीर और गनी सब की थी एक हालत, लगाया था माली ने एक बाग ऐसा, न था जिसमें छोटा बड़ा कोई पौधा, बेनफसी। खलीफा थे उम्मत के ऐसे निगहबान, हो गल्ले का जैसे निगहबान चौपा, समझते थे जिम्मी और मुस्लिम को यकसां, ना था अहद व हर में तफावत नुमाया, यानी सबके लिए एक ही असूल था, कनीस और बानो थी आपस में ऐसी, जमाने में माँ जाई बहने हों जैसी, यानी मेट्स और घर वाले ऐसे थे जैसे सगी बहने हों, राह हक में थी दौड़ और भाग उनकी, फक्त हक पे थी जिससे थी लाग इनकी, छिड़कती न थी खुद ब खुद आग इनकी, शरीयत के कब्जे में थी बाग इनकी, जहां कर दिया नरम नरमा गए वो, जहां कर दिया गरम गरमा गए वो, किफायत जहां चाहते हैं वहां किफायत, सखावत जहां चाहते वहां सखावत, जची और तुली दुश्मनी और मोहब्बत, न बेवजह उल्फत न बेवजह नफरत, झुका हक से जो झुक गए इससे वो भी, रुका हक से जो रुक गए इससे वो भी। कितनी समझ आई है, मैं तो एक एक जुमले पे कह रही थी अल्लामा जालना मिनहू। हमारी हालत तब बदलेगी जब हम ऐसे बनेंगे। तो ये तो बेनफसी थी, और इस बारे में हम जिन सहाबा के तस्करे पढ़ेंगे, खबीब बिन जैद बिन आसिम, अब्दुल्ला बिन अमर बिन हराम, अब्दुल्ला बिन जाहश और अब्दुल्ला जुल जबादैन, तीन अब्दुल्लाओं का तस्करा है। अगर आप आयत 26 के साथ ले लें सूरत यासीन की, अभी जिसका हम किस्सा पढ़ रहे थे और आगे कंटिन्यू करेंगे, तो इनके बारे में काब अखबार कहते हैं कि ये जो सूरत यासीन का मर्द मोमिन है ना, इसकी मिसाल हज़रत हबीब बिन जैद बिन आसिम की थी, क्योंकि वो कबीला बनू माजन बिन नजार से थे, जिन्हें यमामा में मुसलमा कज़ाब मलून ने शहीद कर दिया। तो आपने फरमाया कि अल्लाह की कसम, ये हबीब भी इसी हबीब की तरह जिसका ज़िक्र सूरत यासीन में है। सोचिए ज़रा क्या खूबी इनकी, बेनफसी, अपनी जान से आगे बढ़कर दूसरे को फ़ायदा कौन देता है। देखिए ज़रा सर में दर्द हो जाए, अपना बच्चा भी अच्छा नहीं लगता, सच बताइए। नींद आई हो तो कोई प्यारे से प्यारा भी आपको क्या हो बातें करें तो दिल करता है? नहीं दिल करता। जब तक आपको अल्लाह के दीन से ऐसी मोहब्बत नहीं हो जाती, हम रिस्क पे हैं। फिर जो दूसरे सहाबी अब्दुल्ला जुल जबादैन, ये गज़वे तबूक में शहीद हुए थे, अल्लाह के नबी ने अब्दुल्ला की गवाही दी थी, यतीमी में पैदा हुए, ईमान लाए, चचा ने सजा के तौर पर कपड़े तक उतरवा दिए, टाट के दो कपड़ों में इन्होंने हिजरत की थी, इसलिए इनको जुल जबादैन कहते हैं, दो टाटों वाला। दुआएं और जिक्र करने वाले थे और गज़वे तबूक में शहीद हो गए थे। फिर अब्दुल्ला बिन अमर बिन हराम है, ठेरों कर्जा मौजज़ाना तौर पर इनका अदा हो गया था, बैत अक्बा सानी में कबूल इस्लाम किया, शहादत की दुआ मांगी और गज़वे उहद में शहीद हो गए। इनकी लाश का मुसला किया गया मगर फरिश्तों ने इन पर अपने पर फैला दिए। फिर अब्दुल्ला बिन जाहश कबूल इस्लाम के बाद हिजरत की हबशा की तरफ, सरिय नखला में क़्यादत की, जज्बे शहादत से मामूर दुआ की थी और गज़वे उहद में शहादत पाई और हज़रत हमज़ा के साथ दफन हुए। ये तो थे इनके चंद, वक्त हुआ तो बाद में आपको इनकी थोड़ी डिटेल्स भी बता दूंगी। मुश्किल और मुसीबत के वक्त की दुआ है आज हमारे पास, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, आमीन। अल्लाह हम सब की तकलीफ़ों को भी दूर कर दे। और अब्दुल्ला बिन जहाज और साद बिन अबी वक्कास की बड़ी प्यारी दुआएं हैं। हुआ क्या था कि अब्दुल्ला बिन जहाज गज़वे उहद में हज़रत साद बिन वक्कास से कहते हैं कि साद आओ मिलकर दुआ करें, हर शख्स अपनी ज़रूरत के मुवाफिक दुआ करे और दूसरा आमीन कहे, ये कबूल होने के ज़्यादा करीब है। कहा ठीक है, कोने में चले गए। अब देखिए कितना प्यारा तरीका है, दो दोस्त ने बैठकर कभी दुआएं करें कि मैं दुआ करूंगी तो आप आमीन कहें और जो आप दुआ करेंगे उस पर मैं आमीन कहूँ। कहा ठीक है, कोने में चले गए। अब ज़रा इनकी दुआएं तो सुनिए। हज़रत साद ने दुआ की, या अल्लाह जब कल को लड़ाई हो तो मेरे मुकाबले में एक बड़े बहादुर को मुकर्रर फरमाना, जो सख्त हमलावर वाला हो, वो मुझ पर सख्त हमला करे और मैं इस पर ज़ोरदार हमला करूं, फिर मुझे इस पर फतह नसीब फरमा कि मैं इसको तेरे रास्ते में कत्ल कर दूं। इस दुआ पे हज़रत अब्दुल्ला ने आमीन कही। ये कैसी दुआएं करते थे, हमें तो इनकी दुआएं भी नहीं समझ आती, हमारी तो वेवलेंथ भी नहीं इनसे मिलती। अब दूसरी भी दुआ सुन लीजिए। इसके बाद हज़रत अब्दुल्ला ने दुआ किया, अल्लाह कल को मैदान में एक बहादुर से मुकाबला हो जो सख्त हमला करने वाला हो, मैं इस पर शिद्दत से हमला करूं, वो भी मुझ पर ज़ोर से हमला करे और फिर वो मुझे कत्ल कर दे। उन्होंने क्या कहा था, मैं उसको कत्ल कर दूं। ये कहते हैं वो मुझे कत्ल करे फिर मेरे नाक कान काट दे, चॉप कर दे, कीमा बना दे, फिर क़यामत में मैं जब तेरे हजूर पेशी हो तो तू कहे कि अब्दुल्ला, या आप भी अपने अब्दुल्ला को सुनाइएगा, तेरे नाक कान क्यों काटे गए? मैंने अर्ज़ किया, या अल्लाह तेरे और तेरे नबी के रास्ते में काटे गए। फिर तू कहे कि सच है मेरे ही रास्ते में काटे गए। हज़रत साद ने आमीन कही। अब देखिए आगे क्या होता है। दूसरे दिन लड़ाई हुई और दोनों साहिब जो थे उनकी दुआएं इसी तरह कबूल हुई जिस तरह उन्होंने मांगी थी। हज़रत साद कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन जहश की दुआ मेरी दुआ से बेहतर थी। मैंने शाम को देखा कि इनके नाक कान एक धागे में पिरोए हुए हैं। उहद की लड़ाई में इनकी तलवार भी टूट गई। अल्लाह के नबी ने इनको एक टहनी अता फरमाई, यानी स्टिक, दीवार तैयार तो थे ही नहीं ना, तो दरख्त से एक जो होती है ना शाख, वो उतार के इनके हाथ में दी। इनके हाथ में जाने की देर थी, वो तलवार बन गई। ये नबी का मौजज़ा था और अरसे तक बात में रही और 200 दीनार में फ़रोख्त हुई, और दीनार सोने के एक सिक्के का नाम है। तो अल्लाह सुनता ना, और हमारी दुआएं कितनी अजीब। हम तो अपने बच्चों को अब ये भी नहीं दुआ देते कि मुत शहीद। किसी को अव्वल तो नए कपड़े पहने देकर दुआ कहाँ करते हैं हम कि इल्बिस जदीदा नि शमीदा व मुझ शहीदा, और अगर करते भी तो कहते नहीं आती दुआ, बस इल्बिस जदीदन नए कपड़े पहनते रहो, ए शमीदन तुम्हारी तारीफ हो, बस बस मुझ शहीदन नहीं कहना। ऐसे मुसलमानों की अल्लाह मदद करे, ये नहीं हो सकता। आइए ज़रा पढ़ते हैं सूरह यासीन को और देखेंगे कि ये मुर्दों के लिए कि जिंदों के लिए है। 36 नंबर की सूरह है, इस पारे में हम इसको 22 से 83 तक देखेंगे। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा लिय ला अबुदु अल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। रुकू नंबर 1 है पारे का, 22 से 32, 32 तक है। कौम की खैर ख्वाही की फ़िक्र, कैसे और मुझे क्या हो गया कि मैं उसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया, और तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे। क्या मैं इसे छोड़कर ऐसों को माबूद बनाऊं कि अगर अल्लाह रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो इनकी सिफारिश मुझे कुछ भी नुकसान ना पहुंचा सके और ना वो मुझे बचा सके। फिर तो मैं यकीनन खुली गुमराही में हूँ। मेरी सुनो, मैं तो सच्चे दिल से तुम सब के रब पर ईमान ला चुका हूँ। इससे कहा गया कि जन्नत में चला जा, कहने लगे काश मेरी कौम को भी इल्म हो जाता कि मुझे मेरे रब ने बख्श दिया और मुझे बाइज्जत लोगों में कर दिया, और इसके बाद हमने इसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर ना उतारा और ना हम इस तरह उतारा करते हैं। यानी सब नेमतें फिर ख़त्म हो गई उनकी। वो तो एक ज़ोर की चीख थी कि यकायक वो सब के सब बिल्कुल बुझ बुझा गए। ऐसे बंदों पर अफसोस, कभी भी कोई रसूल इनके पास नहीं आया जिसकी हंसी उन्होंने ना उड़ाई हो। क्या उन्होंने नहीं देखा कि इनसे पहले बहुत सी कौमों को हम गारत कर चुके और वो इनकी तरफ लौट कर ना आएंगे, और नहीं है कोई जमात मगर ये कि वो जमा होकर हमारे सामने हाजिर की जाए। तो ये है जी वो मर्द मोमिन जिस पे हमने इतनी बात की। अब देखिए, तीन रसूलों का इनकार, और आज आपने तीन अब्दुल्लाओं की कहानी पढ़ी है, और एक शख्स दूर से आके फ़ायदा उठा रहा है और करीब वालों को फ़ायदा नहीं हो रहा। क्या पता चला कि मर्द मोमिन जिसका तस्करा इधर है उसमें और सहाबा कराम में क्या मुमासलत है। मुख्तलिफ लोग थे मगर पैगाम एक ही, और वो क्या है, हक की मार्फत। जब आप अल्लाह को पा जो लेते हैं तो वो माल ही अला बुदू, अब देर इज़ नो वे कि मैं अल्लाह की इबादत ना करूँ। जिसके दिल पे अल्लाह की बड़ाई आ जाती है ना, वो टूट जाता है, उसकी आंखों से फिर आंसू बहते हैं। तफीदु मिन अदम मिम्मा रफू मिनल हक, हक को पहचान नहीं है। दुआ करें अल्लाह हमें इस साल हक की मार्फत दे दे। वमा कदरुल्लाह हक का कदरी, हम पे फिटना हो। फिर इसी तरफ देखिए कि एक अल्लाह को मानने वाले थे, बातिल के आगे डट जाने वाले थे, और सबसे बड़ी बात अपनी कौम के खैर ख्वाह थे, जन्नत के मुस्तहिक बन गए। आपने मैंने भी अपने अंदर इखलास लाना है, मर्द मोमिन जैसी खूबियाँ अपने अंदर लाने की कोशिश करनी है, और अल्लाह की इबादत की वाज़े हकीकत समझनी है, अपनी कौम की खैरख्वाही करनी है, आखिरी अंजाम के बारे में खबरदार करना है, रसूलों की कदर पहचाननी है, तबाहशुदा कौमों से इबरत लेनी है, और अल्लाह के सामने खड़े होने का यकीन रखना है। यौम यकूमुन नास लिरब्बिल आलमीन। आगे जिरको नंबर 2 आयत 33 से 50। कायनात अल्लाह के हुक्मों की ताबे है। यहाँ से आपको आयातें कौनी कौन सी होती हैं, कौनी कायनात की, यूनिवर्स की, वो देखेंगे। व आयतुल्लहुमुल अर्दुल मैता, और इनके लिए एक निशानी खुश्क ज़मीन है जिसको हमने ज़िंदा कर दिया और इससे गल्ला निकाला जिससे वो खाते हैं, और हमने इसमें खजूरों के और अंगूरों के बागात पैदा कर दिए, और जिनसे हमने चश्मे भी जारी कर दिए ताकि लोग इसके फल खाएं, और इनको इनके हाथों ने नहीं बनाया, फिर क्यों शुक्रगुजारी नहीं करते। वो पाक के ज़ात जिसने हर चीज़ के जोड़े पैदा किए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और नर और मादा सब कुछ, ख्वाह वो ज़मीन की उगाई हुई चीज़ें हों, ख्वाह खुद इनके अपने नफ्सों में हों, ख्वाह वो चीज़ हो जिसे वो जानते भी नहीं, और इनके लिए एक निशानी रात है जिससे हम दिन को खींच देते हैं तो वो यकायक अंधेरे में रह जाते हैं। सूरज के लिए जो मुकर्रर राह है वो इसी पर चलता रहता है। ये है अंदाज़ा मुकर्रर करदा गालिब बाइल्म अल्लाह ताला का। और चांद की हमने मंजिलें मुकर्रर कर रखी हैं यहाँ तक कि वो लौट कर पुरानी टहनी की तरह हो जाता है। ये कब होता है? आखिरी रातों का चांद। शुरू में क्या होता है? हिलाल, फिर कमर, कमर के मरहले, फिर 14वीं और 13वीं और उसके इर्द गिर्द बदर, फिर दोबारा कमर, और आखिर में फिर कल और जो निल कदीम, खजूर की सूखी टहनी की तरह। अल्लाह ताला कितनी खूबसूरत एनालॉजीज देते हैं कुरान पाक में, उसी की तरफ इशारा है। आगे, न सूरज की ये मजाल है कि चांद को पकड़े और न रात दिन पर आगे बढ़ जाने वाली है, और सब के सब आसमान में तैरते फिरते हैं, और इनके लिए एक निशानी ये भी है कि हमने इनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार किया और इनके लिए इस जैसी और चीज़ें पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं, और अगर हम चाहते तो इनको डबो देते, फिर ना तो कोई इनका फरियाद रस होता कि वो बचा जा सके, लेकिन हम अपनी तरफ से रहमत करते हैं और एक मुद्दत तक के लिए इन्हें फ़ायदे दे रहे हैं। और इनसे जब कभी कहा जाता है कि अगले पिछले गुनाहों से बचो ताकि तुम पे रहम किया जाए, और इनके पास तो इनके रब की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं आती जिससे ये बेरुखी ना बरतते हों, और इनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह के दिए हुए में से कुछ खर्च करो, तो ये कुफार ईमान वालों को जवाब देते हैं, हम इन्हें क्यों खिलाएं जिन्हें अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला पिला देता, तुम तो हो ही खुली गुमराही में। देखिए अपनी कंजूसी को कैसे छुपाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि वादा कब होगा, सच्चे हो तो बतलाओ, इन्हें सिर्फ एक सख्त चीख का इंतज़ार है जो इन्हें आप पकड़ेगी, और ये बाहम लड़ाई झगड़े में ही होंगे। इस वक्त ना तो ये वसीयत कर सकेंगे और ना अपने अहल की तरफ लौट सकेंगे। अल्लाह अकबर, अचानक मौत से अल्लाह बचा के रखे। अल्लाह तब मौत दे जब पूरे हिसाब मामलात क्लियर हों, ना अल्लाह का हक हमारे ऊपर हो, ना बंदों का हक हो, ना कोई ज़कात हो, ना कोई फ़र्ज़ हमारे सर पे हो, क्योंकि अचानक मौत मोमिन के लिए रहमत है लेकिन फाजिर के लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। फिर आप देखिए कि आयत 38 में जो बात हुई सूरज के डूबने जाने की, तो इसमें बुज़र से जो रिवायत है, अल्लाह के नबी से पूछा गया था कि ये कहाँ जाता है सूरज, तब नहीं पता था ना कि अमेरिका चला जाता है, फिर वहाँ से निकलता है तो आगे चला जाता है। तो साहबा ने सवाल किया, आपने फरमाया कि अर्श के नीचे जाके सजदे में चला जाता है, फिर दोबारा निकलने की इजाज़त मांगता है, और एक दिन वो आएगा कि जब वो दोबारा निकलने की ख्वाहिश करेगा तो उसे कहा जाएगा जिधर से आए थे उधर लौट जाओ। बुखारी की रिवायत है ये 3199। पता क्या चला कि वशम्सु तजरीली मुस्तकर्रिल्लहा ज़ालिका तकदीरुल अज़ीज़िल अलीम। कितने सालों से सूरज 19 से 20% उनकी अलाइनमेंट में फ़र्क नहीं आया। इतना बड़ा सूरज अल्लाह के इशारों पर चलता है, तुम क्यों नहीं चलते? क्या सीखा? कायनात से नज़्म व ज़ब्त सीखना है, डिसिप्लिन सीखना है, नेमतों का सही इस्तेमाल करना है, अल्लाह ताला से डर के रहना है, अल्लाह की निशानियों से मुंह नहीं मोड़ना, रोशन निशानियों पे गौर व फिक्र करके अल्लाह का कुर्ब पाना है, और अल्लाह ताला के दिए हुए में से खर्च करना है। आगे रुकू नंबर 3 है 51 से 67। रोज़े क़्यामत दो तरह के इंजाम। वनुफी खफ़ सूर, क्या होगा? तो सूर के फूंक जाते ही सब के सब अपनी कब्रों से अपने परवरदिगार की तरफ तेज़ तेज़ चलने लगेंगे, कहेंगे हाय हाय, हमें हमारी ख्वाबगाहों से किसने उठाया? यही है जिसका वादा रहमान ने दिया था और रसूलों ने सच सच कह दिया था, ये नहीं है मगर एक चीख के यकायक सारे के सारे जमा होकर हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। बस आज किसी शख्स पर कुछ भी जुल्म ना होगा और तुम्हें नहीं बदला दिया जाएगा मगर सिर्फ उन्हीं कामों का जो तुम किया करते थे। जन्नती लोग आज के दिन अपने दिलचस्प मशगलों में हशाश बशाश हैं, वो और इनकी बीवियां सायों में मुसहरियों पे तकिया लगाए बैठे होंगे। इनके लिए जन्नत में हर किस्म के मेवे होंगे और भी जो कुछ वो तलब करेंगे। मेहरबान परवरदिगार की तरफ से इनको सलाम किया जाएगा, सलामन कौलम में रब्बिर रहीम। कभी बैठे अपने मियाँ साहब के साथ इतने नाजों रदाओं से, तख्त पे तकिया लगा हुआ है, साए हैं, फल और फूल हैं, टाइम ही नहीं है, मसरूफ़ी बहुत है। अल्लाह ने बंदे की हर डिज़ायर और उसकी ख्वाहिश का ख्याल रखा है जन्नत में। और इसके बरक्स अब एक और तस्वीर, मुमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून। ए गुनाहगारों, तुम आज अलग हो जाओ। ए औलाद आदम, क्या मैंने तुमसे कौलो इकरार न लिया था कि तुम शैतान की इबादत ना करना? वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और मेरी ही इबादत करना सीधी राह यही है, और शैतान ने तो तुम में से बहुत सारी मखलूक को बहका दिया। क्या तुम अक्ल नहीं रखते? यही वो दोजख है जिसका तुम्हें वादा दिया जाता था। अपने कुफर का बदला पाने के लिए आज इसमें दाखिल हो जाओ। और अगली आयत को ज़रा गौर से सुनिएगा, اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم. ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہریں لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے. تیار ہے؟ یہ ہمارے بھیدی ہیں, سپائس, جاسوس ہیں. یہ ہاتھ پاؤں, یہ آپ کی میری ساری باتیں نوٹ کر رہے ہیں. یہ ہماری سکن ریسیپٹر ہے. میری آواز جو ہے نا ریکارڈر میں بھی جا رہی ہے اور یہ سکن بھی لے رہی ہے. سائنسدانوں نے اس کو ڈسکور کر لیا. پرانے لوگوں کی آوازیں فضا میں ہیں. سائنسدان بڑے یہ وہ, اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بڑے لوگ تھے نا جیسے آئنسٹائن ٹائپ کے یا ذہنی طور پہ بڑے اسٹرانگ, ان کی ان ساری باتوں کو جو اپنی زندگی میں وہ تجربات کر کے ان کو جمع کریں اور اس کو آنے والے لوگوں کے لیے استعمال کریں. اور یہ گورو نے کر لینا, ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنا, نہیں پڑھنا نہیں چاہیے, لکھنا نہیں چاہیے, یہ نہیں کرنا چاہیے, وہ نہیں کرنا چاہیے. ہم سست ہو گئے. ہم دنیا کا بھی کام چل چلاؤ کا کر جان پہ پڑا ہوا کام کرتے ہیں, جان چھڑاتے ہیں. سڑک بنائیں گے, چار پانچ چھ ماہ سڑک ٹوٹی پڑی ہوگی. چیز اب لیں, جس گھر میں جائیں ان کی ٹوٹیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, ان کے فاصلز میں سے پانی لیک کر رہا ہے. بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ جس ملک میں ٹوٹی نہیں بنانی آتی وہ بتائیں حکومت کیا چلائیں گے؟ صرف یہ کہ ہم لیزی ہو گئے, دھوکے باز, دکھاتے کچھ کرتے کچھ, سیمپل کچھ ریئل کچھ. آپ ایک چیز بننی تھے, بن کے آئے گی تو کچھ اور ہی بنی ہوگی. دکھانے میں یہ تصویریں دکھائیں گے, اصلی کی بھیجیں گے ریپلیکا. کیا ہو گیا اس ملک کو؟ مجھے تو یہ مسلمان ملک نہیں لگتا. قرآن کی ضرورت ہے. اب آگے سنیے اللہ کی ڈانٹ ہے. اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے, پھر یہ راستے کی طرف دوڑتے پھرتے, لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا؟ انہیں اللہ کہتے ان آنکھوں کی جگہ سے آنکھیں ہٹا کے بالکل پلین کر دو, لتمسنا, یہ کٹس بھی ختم ہو جاتے ان کی آنکھوں کے. اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں مسخ کر دیتے, پھر نہ وہ چل پھر سکتے اور نہ لوٹ سکتے. اللہ ہمیں پورے انجام سے بچائے. کیا پتہ چلا, صحابہ کرام جنت میں جب جائیں گے تو دوسرے جنتیوں کی طرح کیا شان ہوگی, اپنی ازواج کے ساتھ مسندوں پر بیٹھے ہوں گے, جنت میں خوش و خرم ہوں گے, پسندیدہ مشاغل میں مصروف ہوں گے, من پسند زندگی ہوگی اور رب رحیم کی طرف سے سلام آئے گا. واٹ ایلس ڈو وی نیڈ؟ چار دن محنت کر لیں, وہاں کی موجیں بہاریں ملیں گی. پھر آپ دیکھیں یہاں جو ہاتھوں اور پاؤں کی گواہیوں کی بات ہے, پاؤں کی گواہی کیا ہے؟ اس کمائی کے بارے میں جو وہ کرتے تھے. مجرمین کے اپنے اعضاء کی گواہی کہ ہمارے ذریعے سے انہوں نے فلاں فلاں غلط کام کیے تھے. دنیا میں جب دو چار لوگ مل کے گناہ کرتے ہیں نا, جیسے ایک ماسی چوری کرتی ہے, سار ڈرائیور بھی مل گیا, مالی بابا بھی مل گیا, تو جب پکڑی جاتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ بھلا مجھے اس نے پر وہ کیا تھا, اس نے کہا تھا دروازے میں کھڑا رہوں گا. پھر سارے پول کھل جاتے ہیں, وہ سارے سیاسی اتحاد جو ہوتے ہیں نا وہ ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں. جو غلط چیز کے لیے جڑیں گے نا وہ بہت جلدی ٹوٹ جائیں گے. ایک ہی چیز صحابہ کو جوڑے ہوئے تھی, وہ مقصد کی سچائی تھی, بے نفسی. میرا وجود نہیں کوئی نہیں, میرا نام کوئی نہیں, میں کچھ نہیں کر رہا, میں کچھ نہیں بیٹھ رہی, نہیں کوئی بات نہیں, کام ہو رہا ہے, اٹس فائن, گو ہیڈ. اور نہیں تو میں میرا نام کی طرح ہے, میرا رینک کیا ہے, میرا کیا عہدہ ہوگا, میری کیا ڈیوٹی ہوگی, مجھے تو کوئی مینشن ہی نہیں کرتا, ہمارا تو آج تک نام نہیں لیا, پتہ نہیں ہمارے میں کیا کمی ہے. بے نفسی. تعریف تنقید سے جس دن آپ بے نیاز ہوں گے اس دن آپ کی تعریفوں کے پل بننے لگیں گے انشاءاللہ. کیا سیکھا؟ قبروں سے اٹھائے جانے پہ یقین رکھنا ہے, رحمان کے وعدوں پہ یقین رکھنا ہے, اللہ سے کلمہ سلامتی سننے کے لیے آج کوشش کرنی ہے. دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو سلام قولم رب رحیم کے قابل بنا دے. صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے, عقل سے کام لینا ہے, یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آگے رکوع نمبر 4 68 سے 83 آخری رکوع ہے یہ غالباً. اللہ کو خالق مان لو. ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق, اور جسے ہم بوڑھا کر دیتے ہیں اسے پیدائشی حالت کی طرف پھر الٹ دیتے ہیں, کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتے؟ نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شعر سکھائے اور نہ یہ اس کے لائق ہے, وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ وہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے اور کفار پر حجت ثابت ہو جائے. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے بھی پیدا کر دیے جن کے یہ مالک ہو گئے, और इन मवेशियों को हमने इनके ताबे फरमा कर दिया, जिनमें से बास तो इनकी सवारियां हैं और बास का गोश्त खाते हैं। इन्हें इनमें से और भी बहुत से फ़ायदे हैं, खाने और पीने की चीज़ें यानी दूध, क्या फिर भी ये शुक्र अदा नहीं करते? और वो अल्लाह के सिवा दूसरों को माबूद बनाते हैं ताकि वो मदद किए जाएं, हालांकि इनमें से इनकी मदद की ताकत ही नहीं, लेकिन फिर भी मुशरिकीन इनके लिए हाजिर बाश लश्करी हैं। बस आपको इनकी बात गमनाक न कर दे, हम इनकी पोशीदा और एलानिया सब बातों को बखूबी जानते हैं। क्या इंसान को इतना भी मालूम नहीं कि हमने इसे नुतफे से पैदा किया, फिर यकजक वो सरी झगड़ालू बन जाता है, और इसने हमारे लिए मिसाल बयान की और अपनी असल पैदाइश को भूल गया। कहते हैं लगा इन गली सड़ी हड्डियों को कौन जिंदा करेगा। मई युखजिल निज़ाम वही रमीम। एक काफिर कब्रिस्तान में से एक पुरानी हड्डी लेकर आकर कहता है, उसकी बातें अल्लाह ने इधर नोट कर दी, आप जवाब दीजिए इन्हें वो जिंदा करेगा जिसने इन्हें पहली बार पैदा किया। वो सब तरह की पैदाइश का बखूबी जानने वाला है, वही है जिसने तुम्हारे लिए सब दरख्त से आग पैदा की जिससे तुम यकायक आग सुलगाते हो, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, क्या वो इन जैसों के पैदा करने पर कादिर नहीं? बेशक कादिर है, और वही पैदा करने वाला दाना व बीना है। वो जब कभी किसी चीज़ का इरादा करता है तो इसे कहता है कौन फयकून, काफ़ी है क्या हो जा, तो वो इसी वक्त हो जाती है। बस पाक है वो अल्लाह जिसके हाथ में हर चीज़ की बादशाहत है और जिसकी तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। वापसी वापसी वापसी, ये है मुर्दों के पास पढ़ी जाने वाली सूरत, बीमारों के पास, पूरी सूरत में रिटर्न इलैही तुरजाउन। तो क्या सीखा? यकीन करना है कि कुरान वाज़ेह नसीहत है, अल्लाह ताला की किताब से लोगों को ख़बरदार करना है, ईमान रखना है कि रोज़े क़यामत अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं कर सकेगा, लोगों की बातों को सर पे सवार नहीं करना, इतना नहीं लोगों का फ़िक्र करना कि दीन का काम ही छूट जाए, सरी झगड़ालू नहीं बनना, और अपनी तख्लीक की हकीकत को नहीं भूलना। तो सूरत यासीन का पैगाम क्या है? अपनी मौत को मत भूलो। आज रात में अगर जागें थोड़ा सा तो कोई आधा पौना घंटा सिर्फ अपनी मौत के बारे में गौर कीजिए, नथिंग एल्स। मैं कहाँ मरूंगी, घर में होंगी कि बाहर होंगी, अपने मुल्क में होंगी या किसी गैर मुल्क में होंगी, रात होगी कि सुबह होगी कि दिन होगा कि शाम होगी, गर्मियाँ होंगी कि सर्दियाँ होंगी, उस दिन बारिश हो रही होगी कि खुश्की होगी, पता नहीं मुझे कफन भी नसीब होगा कि नहीं। नहीं सोचना चाहिए, ये सोचेंगे ना फिर बदलेंगे। फिर इसी तरह अल्लाह ही मालिक कुल कायनात है, इसलिए उसके अलावा किसी की तरफ देखो भी नहीं, और वही दोबारा ज़िंदा करेगा। बड़ी प्यारी सूरत है, लोग इसको अपनी तरीक़ों से पढ़ते हैं, मुझे तो ऐसे लगता है कि हिदायत के लिए पढ़ने का फ़ायदा है। आप दोस्तों को जमा करके सिर्फ सूरह यासीन की तफसीर सुना दें, बस शायद के दिल में उतर जाए बात। अल्लाह अमल की तौफीक दे।